तो आप जानना चाहते हैं कि मन के अंदर जो संकल्प उठता है या जो विचार उठता है उससे प्रेरित होकर शरीर से कर्म होते हैं, तो ये कर्म स्वतः ही हो रहे हैं या इस पर कोई कंट्रोल हो सकता है? महाराज जी की वाणी एक चीज कह रही है बड़ी स्पष्ट, जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके तिल भर तिस फरमाए। तो ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें पूरा का पूरा प्रकृति चक्र शामिल है। मेरा प्रकृति पर असर पड़ता है, प्रकृति का मेरे ऊपर असर पड़ता है, तो इसके हिसाब से तो जो कुछ भी शरीर के द्वारा घटनाक्रम घटता है जिसको हम शारीरिक एक्शन कहते हैं, शारीरिक कर्म कहते हैं, तो ये तो फिर प्रकृति के बंधन में ही है और इसी को ही हम प्रारंभ करके कह देते हैं जो देह से होना है वो होकर रहेगा, उसे आप रोक नहीं सकते। महर्षि रमण से किसी ने एक बार कहा कि महर्षि ऐसा कहते हैं जो करता है ईश्वर करता है, तो हम कर्म ना करें तो क्या बात है? तो महर्षि ने कहा जरा रोक कर देख लो, कर्म ना करने की कोशिश करके देख लो, तुम कर्म किए बिना रह ही नहीं पाओगे। और गीता में भी एक अलग तरीके से यही बात समझाई गई है। अर्जुन जब युद्ध भूमि में उपस्थित है, जब वो देखता है सामने दृश्य को कि मेरे ही गुरु जिन्होंने मुझे धनुर्विद्या सिखाई, वही भीष्म पितामह जिनकी गोदी में मैं खेला, वही सब मेरे रिश्तेदार सब ये मौजूद हैं, मेरे मित्र मौजूद हैं और मेरे विरुद्ध लड़ने को तैयार हैं, तो इन सबको मारकर मैं कौन सा सुख भोगूंगा? तो उसके मन में जब ये बात आती है, उसका स्वभाव तो त्यागी था ही, तो उसने सोचा कि इससे तो अच्छा है मैं संन्यास ले लूं और ईश्वर की भक्ति करूं, इतने लोगों को कष्ट पहुंचा के, इन लोगों को मार के कौन सा सुख भोगेंगे हम लोग। तो यही सोच के उसने गांडी कृष्ण के आगे रख दिया, उन्होंने कि वासुदेव मैं युद्ध करना नहीं चाहता। जो भी कारण था उसने बता दिया उनको। अब भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, अर्जुन तू ये निर्णय मोह में आकर ले रहा है, और बहुत कुछ समझाया उसको लेकिन समझ में उसकी नहीं आया। तब उन्होंने वो दिव्य दर्शन दिया कि देख ये सारा युद्ध पहले ही हो चुका है, तू इसको करने वाला नहीं है, ये रचना पहले ही रची जा चुकी है और ये सब पहले ही मारे जा चुके हैं, तू इनको मारने वाला कोई नहीं होता। अर्थात कहने का मतलब ये है, जो ज्ञान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, अर्जुन के विश्वास में वो बात नहीं आ रही थी, तो उन्होंने प्रैक्टिकली इसको दृश्य दिखा दिया अपनी शक्ति से, अपनी योग माया से, कि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है। तो अर्जुन की बात समझ में आ गई और उसने कहा, स्मृति लब्धा, मुझको स्मृति प्राप्त हो गई, अब आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करने को तैयार। तो वही घटनाक्रम जो घटना था वो घटा। अर्जुन की देह ने युद्ध किया लेकिन अर्जुन ने युद्ध नहीं किया, भेद यहां पर यह बारीक था। अर्जुन की देह ने तो युद्ध किया, अर्जुन ने युद्ध नहीं किया। इसका मतलब जो युद्ध का परिणाम हुआ, अच्छा या बुरा, उस परिणाम से अर्जुन निर्लेप रहा, चाहे वो सुखरूप था चाहे वो दुखरूप था, चाहे वो मन के अनुकूल था चाहे वो मन के प्रतिकूल था, अर्जुन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि वो केवल ईश्वर की आज्ञा पालन कर रहा था और अपने आप को कर्ता नहीं समझ रहा था। तो जो कर्म होता है वो देह से होता है और देह के दो पार्ट हैं, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। स्थूल पार्ट को हम ये पांच तत्व का पिंजड़ा कहते हैं, शरीर कहते हैं, और इसका जो सूक्ष्म पार्ट है उसको हम मन कहते थे। तो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कर्म होते हैं। इसीलिए मन में संकल्प तो आपके हजारों आते हैं लेकिन उसमें से कोई कोई कर्म में परिवर्तन होता है। जो कर्म में परिवर्तन हो गया वो प्रारब्ध, वो इस देह का प्रारब्ध है। तो यह सूक्ष्म चीज समझने की यह है कि वो प्रारब्ध मेरा है या देह का है, हम यही कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए जितने भी सत्पुरुषों के शास्त्र हैं वो इस विज्ञान को बड़ा बारीकी से समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखो ना कि दूसरे अध्याय से गीता शुरू होती है, पहले अध्याय में तो है ही कुछ नहीं। दूसरे अध्याय में ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, उसी प्रकार ये जीव पुरानी देह त्याग कर नई धारण करता है। तो सारा ज्ञान जो गीता का समझाना है वो डिपेंड तो इस पे करता है, बेस तो इस पे करता है। जिसने इस बात को ही नहीं समझा गीता के दूसरे अध्याय में, वो आगे पूरी गीता समझ ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल चीज है। उसको वहम तो हो सकता है मैं गीता समझता हूं, लेकिन वो कुछ का कुछ समझता रहेगा। ऐसी समताविलास आप पढ़ते रहिए, इसको कुछ की कुछ समझते रहेंगे जब तक आप इस बात पर ध्यान नहीं देंगे। इसलिए महाराज जी ने इसके बारे में बड़ा ही स्पष्ट कई जगह लिखा है कि एक जगह बुद्धि स्लिप हो भी गई, हमने पूरा ध्यान नहीं दिया, तो दूसरी जगह वही बात आई तो वहां तो ध्यान दोगे आप, कहीं तो ध्यान दोगे आप। और समतावलास के ऑलमोस्ट 464 पेजेस के बाद महाराज जी ने यही बात लिखी जीवन सार सिद्धांत में। वहां प्रश्न लिखा महाराज जी ने, उसका उत्तर भी, प्रश्न भी खुद ही लिखा, उत्तर भी खुद ही लिखा कि जीव को देह क्यों मिली। अब देखिए इस प्रश्न पे विचार करके देखिए, हम तो पढ़ जाते हैं ना ऐसे। वहां कह रहे हैं जीव को देह क्यों मिली, इसका मतलब मैं कौन हूं, वो मेरे लिए लिख रहे हैं ना, ये अपने लिए तो नहीं लिख रहे, वो तो खुद तो ज्ञानी है, वो तो मेरे लिए लिख रहे हैं। तो मुझको क्या संबोधन कर रहे हैं, वो जीव संबोधन कर रहे हैं या शरीर संबोधन कर रहे हैं, वो मुझे ये सिखा रहे हैं कि जीव जिंदा वस्तु है और देह जड़ वस्तु है। जैसे मुझे कपड़ा मिलता है, मुझे मकान मिलता है, मुझे कोई वस्तु मिलती है तो वो जड़ होती है ना, वही पांच तत्व से उसकी रचना होती है, जैसे संसार की रचना है और वही से देह की रचना हुई पांच तत्व से। तो देह के मेटेरियल में और संसार के मेटेरियल में या जमीन के पृथ्वी के मेटेरियल में कोई अंतर ही नहीं है। तो पांच तत्व की ये पृथ्वी जड़ है, तो ये पांच तत्व की देह भी तो जड़ ही हुई ना, जिसका निर्माण ही जड़ वस्तु से हुआ है तो वो जड़ ही तो होगी वो। क्योंकि मुझको देह के बारे में होश है, मैं जानता हूं देह के बारे में, और स्थूल देह के बारे में भी नहीं, सूक्ष्म देह के बारे में भी मैं जानता हूं। मन में क्या संकल्प उठ रहा है मैं जानता हूं, नहीं जानता हूं, क्या विचार उठ रहा है मैं तुरंत पहचान लेता हूं, नहीं पहचान लेता हूं। तो इसका मतलब मैं जानने वाली सत्ता हूं, जो मन के बारे में, देह के बारे में, अर्थात स्थूल शरीर के बारे में और सूक्ष्म शरीर के बारे में जो ज्ञान रखता है वो मैं हूं। तो इसीलिए महाराज जी इन दो चीजों को समतावलास में बिल्कुल अलग करके देख रहे हैं और अलग करके ही आपको दिखाना चाहते हैं, आपको सिखाना चाहते हैं। जिसने ये बात भी समतावलास से नहीं सीखी वो तो सारी जिंदगी समतावलास नहीं समझ सकता, चाहे वो हजार दिन सत्संग सुनता रहे, हजार सत्संग सुन ले, उसके पल्ले नहीं पड़ेगा। ये तो करेगा, बड़े अच्छे सत्संग था, बड़ी तारीफ भी करेगा, बहुत मजा आया, सुननी सब बातें करेगा वो, लेकिन पल्ले उसके नहीं पड़ेगा, पूरी जिंदगी वो कंफ्यूज्ड होके समय निकाल देगा। ऐसे सत्संगी बन के भी समय निकाल देगा अपना। तो इसलिए मां जी कह रहे हैं, प्रेमी जीव को देह क्यों मिली, उसका उत्तर लिख रहे हैं, ख्वाहिश के कारण। इसका मतलब मेरा जो पूर्व जन्म था, देह मिलती है ना जी को, ख्वाहिश के कारण मिलती है। इसका मतलब जब पूर्व जन्म था उस समय भी मेरे मन में ख्वाहिश पल रही होगी, जिसको वासना करके कह देते हैं, डिजायर करके कह देते हैं हम लोग। तो उस वासना के कारण जीव को देह प्रदान की जाती है। और महाजी कह रहे हैं, प्रेमी एक देह छूटने में और दूसरी देह प्राप्त होने में बीच में टाइम गैप नहीं होता। हम कहते हैं ना कि वो इतने दिन कहां रहा, इस लोक में रहा, उस लोक में रहा, ये कहानी किससे है, शास्त्रों की वास्तविकता ये नहीं कहती। जैसे एक स्वप्न आपने देखा और दूसरा स्वप्न आने में कोई देर लगती है क्या, स्वप्न एक के बाद दूसरा कंटिन्यूएशन में आते रहते हैं, और हर स्वप्न में आप देह धारण करते हो, हर स्वप्न में देह धारण करते हो, नहीं करते हो, और संसार भी खड़ा होता है, उसके बनने में कोई टाइम लगता है क्या, और वाणी इसी को समझा रही है आपको। देखो वाणी तो समझा रही है आपको, हम नहीं समझ रहे। सपना जैसे रात का ऐसे जगदा खेल, तो ऋषियों के लिए ये संसार तो स्वप्न के समान है, ये उनका अनुभव है, ये एजम्पशन नहीं है। हम तो इस बात पर 50-50 साल निकल जाते हैं, विश्वास ही नहीं करते कि इतना बड़ा संसार जो आंख से दिखाई पड़ रहा है, इतने कष्ट मिल रहे हैं, इतने लोग रह रहे हैं, ये सपना जैसा हो सकता है, ये संकल्प रूप संसार हो सकता है, ये तो हमारी कल्पना से बाहर की बात है। इसलिए महर्षि रमण आपको अपने अनुभव से सिखाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जब आप सो जाते हो, इंद्रियों का अनुभव बंद हो जाता है, तो उस समय देह का अनुभव भी बंद हो जाता है, आपको नींद आ जाती है, लेकिन मन आपका फिर भी एक्टिव रहता है। तो मन के एक्टिव होने के कारण, अर्थात मन के अंदर इच्छा के संकल्प उठने के कारण स्वप्न आपका तैयार हो जाता है, और स्वप्न में आप नई देह की रचना करते हो और नए संसार की रचना करते हो। क्योंकि ये बात जागने के बाद आप जानते हो कि ना ये संसार वहां था, ना ये देह वहां थी, इससे तो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन आपको याद है ना, वो दृश्य आपको याद रहता है ना, उसमें सुख भी अनुभव करते हो, दुख भी अनुभव करते हो। तो सुख दुख कोई दूसरा अनुभव करता है या आप अनुभव करते हो? मैं तो यही कहूंगा भाई, मैं अनुभव करता हूं। कई भयानक स्वप्न कोई आ जाए तो टूट जाए तो देखो दिल कैसा धड़क रहा है, तेज इसका मतलब मेरा ब्रेन काम कर रहा था, मेरा ब्रेन काम कर रहा था, नहीं तो धड़कन क्यों बढ़ गई है। तो आपकी जो फिजिकल पोजीशन है, आपकी जो शारीरिक पोजीशन है, वो सिद्ध कर रही है कि स्वप्न मैंने देखा था, मैंने ही देखा था, कोई कंफ्यूजन नहीं है, और उसका इफेक्ट मेरे ऊपर पड़ा था। तो अब बताइए, महर्षि रमण कह रहे हैं कि स्वप्न में तेरा मन एक्टिव था, इसलिए स्वप्न की रचना हो गई और उसको तूने ही भोगा नई देह के द्वारा। ये बात वो क्यों कहना चाह रहे हैं? वो इसलिए कहना चाह रहे हैं कि तू, तेरा अनुभव खुद कह रहा है कि तू इस देह में भी रह सकता है और दूसरी देह में भी रह सकता है और तू वही रहेगा। इसको वो जीव कह रहे हैं, जिसने इस देह में भी ये लोक व्यवहार किया, जिसने स्वप्न वाली देह में भी लोक व्यवहार किया, लेकिन दोनों देह में मैं कॉमन था, मैं वही था। इसको वो जीव कह रहे हैं, या जिसको कहीं कहीं जीवात्मा लिखा होता है। तो जीवात्मा कब तक है ये? जब तक इसके अंदर वासना है, जब तक इसके अंदर वासना है, जिसको महाराज जी कह रहे हैं कर्तापन जो है वो ये मूल वासना है। कर्तापन से फिर आगे फैलाव होता है, कर्तापन से वासना, वासना से संसार, यही अज्ञान है जीव को आवागमन दुखसार। ये कर्तापन जीव का अज्ञान है और इसी कारण बार बार आवागमन, ये दुख रूप आवागमन जीव को झेलना पड़ता है। आवागमन क्या है? देह का प्राप्त होना और देह का छूट जाना, इसको आवागमन कहते हैं। महर्षि रमण आगे भी फिर समझाते हैं, वो कहते हैं जब नींद आपकी गहरी हो जाती है तब मन साइलेंट हो जाता है, मन की चंचलता वहां खत्म हो जाती है, उस समय आपको कोई दृश्य दिखाई नहीं पड़ता। और जागने के बाद आप कहते हो कि बड़ी चैन की नींद आई, अर्थात जीव संकल्प रहित हालत में चैन महसूस करता है और जागने के बाद उसका यह अनुभव बताता है और उसकी डिजायर बताती है कि जब भी मुझे नींद आए तो गहरी नींद आए, स्वप्न दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। हर जीव के अंदर से यही डिजायर होती है, मुझे स्वप्न दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, मुझे गहरी नींद आनी चाहिए। उसी की हम कामना करते हैं, उसी की कल्पना करते हैं, लेकिन जीव को यह पता नहीं है। जब तुझको गहरी नींद आई थी तो तुझको होश नहीं था, उसका तू बयान नहीं कर सकता। तो महर्षि रमण एक योग की स्थिति का बयान करते हैं वहां पर। वो कहते हैं कि जो गहरी नींद होती है जिसको सुषुप्ति कहते हैं, उसमें जीव को उस हालत का होश नहीं होता, इसलिए उसका वर्णन नहीं कर सकता वो। लेकिन वो हालत होश में रहते हुए भी प्राप्त की जा सकती है, जिसको हम साधना कहते हैं, अभ्यास कहते हैं, कि साधना के द्वारा वही स्थिति प्राप्त की जा सकती है। तो वो वैसी ही है जैसे कि सुषुप्ति है, लेकिन उसमें जीव का होश बना रहता है, उसका नाम दिया गया है समाधि। तो समाधि में सुषुप्ति का आनंद तो है, लेकिन वहां होश कायम है। इसलिए समाधि से जब ये जीव जागता है, वापस मन के संकल्प में लौटता है, संसार के दृश्य देखता है, उस समय वो बयान कर सकता है कि क्या आनंद था वहां पर। और फिर वो इस संसार में रहना नहीं चाहता, वो बार बार वहीं पहुंचना चाहता है। इसलिए वाणी भी बयान कर रही है महाराज जी की, योगी रोए समाधि को छोड़े प्रभु का हुक्म विसार। देखो ना, वाणी बयान कर रही है, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई एजम्पशन नहीं है, ये रियलिटी है। गुरु आज्ञा का यदि पालन करो, गुरु के ज्ञान को यदि आप बुद्धि में धारण करो, तो आपके अंदर जो विवेक बनेगा, वो विवेक आपको हर समय याद दिलाएगा तू देह नहीं है, तू होश में रहेगा हर समय, देह तेरी छूट नहीं जाएगी, तू देह से अलग नहीं हो जाएगा, लेकिन तो इस होश में रहेगा कि मैं देह नहीं हूं, ये देह प्रभु के हुक्म में चल रही है और ये वो प्रभु इस देह के अंदर मौजूद है, जीवन शक्ति के रूप में इस देह में मौजूद है और इस देह का संचालन कर रहा है। मुझको अच्छी तरह से पता है, 100% पता है कि मैं देह का संचालन नहीं कर रहा हूं, दिल को मैं नहीं धड़का रहा, फेफड़ों को मैं नहीं चला रहा। इतनी बड़ी ये देह की मशीनरी जो किसी फैक्ट्री में बन नहीं सकती है, इतने इसमें ऑर्गन्स हैं, इतने इसमें इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इतने इसमें फंक्शंस हैं कि इस मशीन को वो प्रभु अंतर्यामी बैठा बैठा इसको चला रहा है। मैं तो केवल अहंकारी बना हुआ हूं कि मैंने ये तीर मार दिया, मैंने वो तीर मार दिया, ये मेरा अहंकार है और इसकी सजा भी भोगता हूं, फिर मैं इसकी सजा भी भोगता हूं। इसलिए महाराज जी से जब किसी प्रेमी ने प्रश्न किया, महाराज जी जो कुछ करता है ईश्वर करता है, ऐसा पढ़ते हैं। जब जो करता है ईश्वर करता है तो मुझको कर्म का फल क्यों भोगना पड़ता है, हमारे मन में ही प्रश्न आता है। जब देह से पाप कर्म हो रहे हैं, पुण्य कर्म हो रहे हैं, जब ईश्वर करवा रहा है या यूं करें ईश्वर कर रहा है, तो मैं रेस्पॉन्सिबल क्यों हो जाता हूं। तो देखो महाराज जी क्या उत्तर देते हैं, सरल सा उत्तर है। वो कहते हैं, प्रेमी जब तक तू अपने आप को कर्ता समझ रहा है, जब तक तू अपने आप को कर्ता समझ रहा है, तब तक भोगता भी तू ही रहेगा। और ये केवल मेरी अज्ञानता है, ये इस एक अज्ञानता की कितनी सजा भोगता हूं मैं, कितने जन्म भोगता हूं, जरा विचार करके तो देखो। तो मनुष्य जन्म लेकर मैंने इस अज्ञानता से मुक्त होना है। जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण की जो बात थी, कृष्ण के द्वारा दी हुई जो समझ थी, उसको जब अर्जुन ने सीख लिया तो वो मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो मैं यदि गुरु की सीख को सीख लूं तो मैं भी मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा। लेकिन कब? ये तब जब उस कर्म का मेरे ऊपर लेश मात्र भी इफेक्ट पड़ना बंद हो जाएगा, जिसको हम कर्म फल कहते हैं, जो हमको सुख रूप में और दुख रूप में प्राप्त होता है। आज हम खुद देख लें मेरी क्या अवस्था है, जरा सा काम बिगड़ जाए कैसा दिल धड़कता है मेरा, और जरा सी सफलता मिल जाए मुझे तो कैसा मैं चहकता हूं, कैसा अहंकार मेरे एकदम से भर जाता है, देखो मैं सफल आदमी हूं, मैंने ऐसा किया ऐसा सोचा तो हो गया का। तो इतना अहंकारी हूं मैं, देह का अहंकारी। ये बात वही कहेगा जो अपने आप को देह करके समझेगा। तो आप जो एक्शन देख रहे हो, जो देह के द्वारा हो रहा है, क्योंकि आप देह बनकर घूम रहे हो, आप अविवेकी बनकर जो है कर्म कर रहे हो, इसलिए उसका जो फल है सुख रूप और दुख रूप, वो आपके मन पर इफेक्ट डालता है, या यूं कहिए जीव पर इफेक्ट डालता है, इसको या तो चैन देगा या बेचैनी देगा। और जो जीव पर इफेक्ट डाल रहा है तो वो संस्कार भी बनाएगा, वो संस्कार सारे मन में आपके इकट्ठे हो जाते हैं, तो उन्हीं संस्कारों से के कारण फिर उसके मन के अंदर संकल्प होते हैं। इसी महाजी कहते हैं, प्रेमी एक इच्छा पूरी कर भी लो तुम तो आपको ये क्या दिखाई पड़ेगा कि मेरी एक इच्छा पूरी हो गई, लेकिन आपको ये पता नहीं है ये इच्छा अन्य कई इच्छाओं को जन्म देगी। वो जो इच्छा आपकी पूर्ण हुई है, अब आगे चलकर उसने संस्कार बना लिया। ये ठीक है, ऐसे है जैसे एक बीज आपने जमीन में बो दिया, बोया तो एक बीज है लेकिन अंकुर फूटेगा उसका तो वृक्ष तैयार हो जाएगा। तो इसीलिए हर इच्छा जो आप संसार में देह के द्वारा देह बनकर पूर्ण करते हो, वो कई अन्य इच्छाओं को जन्म देती है और ये माया जाल आपका बढ़ता ही रहता है। तो इसलिए मनुष्य जन्म लेकर मनुष्य से ये आशा नहीं की जाती कि वो अपनी जिंदगी का दुरुपयोग करेगा। एक जानवर बनकर एक पशु बनकर वो कर्म करेगा, क्योंकि हमारे जितने भी कर्म देह से हो रहे हैं, और मैं अपने आप को कर्ता समझ रहा हूं, समझे, मुझे होश नहीं है, तो इसको वाणी साफ कह रही है कि बिना विवेक मानुष जो होई पशु समान जीवन सो होई। तो वाणी मुझको कहां प्लेस कर रही है, जरा विचार करके तो देखो, मैं क्या ध्यान से इन बातों को पढ़ता हूं, कभी सुना भी देता हूंगा, सुन भी लेता हूंगा, जाने कितनी बार सुना होगा मैंने, लेकिन कभी मैंने इस पर गहरा मनन करके देखा कि वाणी कह क्या रही है, ये मुझको किस लाइन में, किन लोगों की पंक्ति में रख रही है ये वाणी। तो जिसकी बुद्धि विवेकवान नहीं है, होश में नहीं है, देह के अहंकार में मद होश है, नशे में चूर है, वो पशु है मनुष्य देह में रहते हुए, क्योंकि पशु से ही आशा की जाती है कि उसको ये कभी होश नहीं आएगा कि मैं देह नहीं, मैं जीव। ये ज्ञान मनुष्य के लिए बनाया गया, और मनुष्य ने यदि ये ज्ञान नहीं सीखा तो वो पशु ही है, बल्कि पशु से भी वो नीच कहा जाता है, समता विलास में उसको पशु से भी नीच कहा गया है, क्योंकि ये पाप करता है, पशु पाप नहीं करता, पशु का जितना भी एक्शन है उसको इंस्टिंक्ट कहते हैं, स्वाभाविक क्रिया है, उसमें बुद्धि के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है, स्वाभाविक क्रिया तो मेरी भी है, लेकिन मुझको ज्ञान दिया जा रहा है ये तेरा प्रारब्ध है, तेरा का मतलब देह का प्रारब्ध है, जीव का प्रारब्ध नहीं है, ये देह का प्रारब्ध है। तो इसीलिए देह, क्योंकि ये प्रकृति का अंश है, इसलिए ये पूरी ये प्रकृति रचना जो है ये ईश्वर के हुक्म में चल रही है। देह के बारे में मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, लेकिन सूर्य चंद्र के बारे में मैं कंफ्यूज नहीं होता, वो आराम से एक्सेप्ट कर लेता हूं, ये तो भैया मनुष्य नहीं चला रहा, ये ईश्वर ही चला रहा है, और जिस धरती पर बैठा हूं ये भी घूम रही है, एक सेकंड भी इसका यदि मूवमेंट रुक जाए तो ये अरबों टुकड़ों में बढ़ जाएगी एक सेकंड में, मुझे कहां होश है इस बात का, मेरी एग्जिस्टेंस जो धरती पर है ये ईश्वर के कारण है, मुझे कहां होश है इस बात का। हम तो टेक्नोलॉजिस्ट का, साइंटिस्ट का गुणगान करते हैं, तो उसने ये बना दिया, उसने ये बना दिया, उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया, रात दिन यही कहते रहते, ईश्वर ने क्या कर दिया, कुछ होश आता है हमको, यदि कह भी देगा कोई तो ऐसे ही कह देगा, जैसे बाय गॉड कह देते ना हम, ऐसे ही कह देते हैं, विश्वास सुना होता हमको। तो इसीलिए जब तक इस शिक्षा को आप पृथ करके नहीं देखोगे, ये शास्त्र जो भी सब कुछ रचते हैं, चाहे वेद व्यास ने गीता की रचना की, चाहे ऋषियों ने उपनिषद लिखे, चाहे महाजी के द्वारा ये समता प्रकाश ग्रंथ की वाणी प्रकट हुई, समता विलास के वचन प्रकट हुए, जब तक हमारे अंदर ये फेथ नहीं है कि ये ईश्वर की राइटिंग है, ये ईश्वर के डायरेक्ट वचन है, तब तक मैं उसको ट्रुथ करके नहीं देखता, अपनी बुद्धि के तर्क को के आधार पर उसको तोलता हूं मैं, कि मेरी बुद्धि के तर्क में यदि ठीक बात बैठेगी तो मैं एक्सेप्ट करूंगा, नहीं बैठेगी तो नहीं करूंगा। इसलिए गुरु धारण करना पड़ता है जिंदगी में, गुरु धारण करने का मतलब यह है कि मेरा उनके मार्गदर्शन पर समर्पण हो जाए। तो इस समर्पित बुद्धि से जो समता विलास को पढ़ेगा, इस समर्पित बुद्धि से जो वाणी पढ़ेगा, वो उससे सीखेगा, करने के लिए सीखेगा, उसके अनुसार अपनी बुद्धि को बदलेगा। सारे निश्चय जो भी संसार ने आपको दिए हैं, हर निश्चय वो बदल देगा यदि गुरुवाणी या गुरु वचन कह रहा है कि ये ठीक है, तो मेरे लिए वो जो कह रहा है वो पत्थर की लकीर है, मैंने उसको समझना है, गहरा मनन करना है, बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं पूछूंगा लोगों से, लेकिन मैं समझकर ही छोड़ूंगा क्योंकि वो सत्य लिखा है। तो इसीलिए हम देखें कि हमारे जो मन के अंदर निश्चय बैठे हुए हैं, हमारी बुद्धि में जो धारणाएं बैठी हुई हैं, जब हम वाणी पढ़ते हैं या हम संतविलास पढ़ते हैं तो कैसे डाउट्स पैदा होते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे डाउट्स आते हैं? आप विश्वास करते हो क्या? आप सुन लेते हो, सुना भी देते हो, लेकिन विश्वास नहीं करता। विश्वास कोई कोई करता है, याद रखिए। लगता तो ऐसे सारे विश्वास करते हैं, महाजी को मानते हैं साहब, महाजी बात कैसे काट सकते हैं हम? लेकिन आपकी करनी महाजी की हर बात को काट रही है, प्रूव कर रही है कि आप महाजी की बात नहीं मान रहे। देखो महाजी क्या लिख रहे हैं संतविलास में। पहले तो कहते हैं ईमानदारी से कमाई करना, और ईमानदारी की कमाई में से 10% सेवा के लिए निकाल देना, निष्काम सेवा के लिए, जिसका रिटर्न आपको नहीं चाहिए, नाम भी नहीं चाहिए कि मैंने दान दिया। क्यों कह रहे हैं? कि वह तेरा इस पे हक ही नहीं है, तेरा अधिकार ही नहीं है इस पर, यह प्रकृति का है। जिस सारी प्रकृति ने तुझे तेरी सेवा की, तेरी देह को पाल रही है, उसका रिटर्न भी तुझे देगा नहीं देगा। ईमानदारी की कमाई का 10% तुम्हें वापस करना है प्रकृति को, इसको यज्ञ कहते हैं। और यदि तू यह नहीं करता तो संतविलास में लिखा हुआ है ये हानि के देने वाला है। अब विचार करके देखो, हानि कौन सी कमाई देगी आपको? जो दूसरे का हक खाओगे वो हानि देगी नहीं देगी, या अपनी कमाई हानि देगी आपको? इसका मतलब यदि मैंने ये सिद्धांत नहीं सीखा, इसका मतलब मेरे श्रद्धा नहीं है, ना गुरु के प्रति श्रद्धा है, ना शास्त्र के प्रति श्रद्धा है। क्योंकि मैं कहां सीख रहा हूं, यदि नहीं करता हूं तो हानि होगी मेरी। क्या आप अपनी हानि चाहते हो? लेकिन आप नहीं करते दान, 10% नहीं निकालते। कहते पहले ही बड़े मुश्किल से गुजारा हो रहा है, 10% निकाल के तो कैसे गुजारा होगा? और जिसको एक वक्त की रोटी मिल रही है, जिसको बेचारा बीमार पड़ गया था, दवा के लिए पैसे उसके पास नहीं है, उसकी क्या दुर्दशा है? अपने से तुलना करके दे, उसकी क्या दुर्दशा है? उस पैसे में उसका हक बनता है, तेरा हक नहीं है। तो इनसेंसिटिव हो जाता है, दूसरे का दुख देकर भी तू उसकी सहायता करने की कोशिश नहीं करता अपने सामर्थ्य के अंदर, तो इनसेंसिटिव हो जाता है, संवेदना तेरी खत्म हो जाती है। अब बताइए फिर कैसा इंसान है तू? जिसके अंदर संवेदना ही ना हो वो इंसान है? वो पशु हुआ या नहीं हुआ? तो सिद्धांत तो बड़े स्पष्ट है, लेकिन मैं कितना पालन करता हूं? और पालन ना नहीं करता हूं इसका मतलब है मेरा उस बात पर निश्चय नहीं है, उस बात पर मैं निश्चय धारण नहीं कर रहा हूं। लिखा तो है मैं बीमारी थोड़ा करता हूं जो मेरा नुकसान हो जाएगा, आप अंदर ऐसे ही अपना जस्टिफिकेशन तैयार कर लेते। तो इसीलिए चाहे वो एक मोटी सी बात हो, जैसे ये दान का सिद्धांत मोटी सी बात है, आदमी समझ सकता है, चाहे वो जीव और शरीर वाला विज्ञान हो, ये जरा बारीक बात है, ये गहरे मनन के बाद ये बात बुद्धि एक्सेप्ट करती है। लेकिन इसके समझे बिना क्या आपका ईश्वर का रास्ता तय हो पाएगा? क्या आप इस अहंकार से मुक्त हो पाओगे कि प्रारब्ध देह का होता है, प्रारब्ध जीव का नहीं होता? कितनी बड़ी बात है, प्रारब्ध मेरा है ही नहीं, प्रारब्ध देह का है। तो जब इस साइंस को समझते हो, अध्यात्म की अध्यात्म विद्या के इस विज्ञान को समझते हो, तब आपको सारी बातें समझ में आती हैं। ये क्यों कृष्ण ऐसा क्यों अर्जुन से कह रहे हैं? इस प्रकाश में आप संतविलास पढ़कर देखो, आपको संतविलास समझ में आ जाएगी, और अपने ऊपर पश्चाताप भी होगा और शर्म भी आएगी, मैं क्या क्या कहता रहा हूं लोगों से, अपने को क्या 30 मार्का समझता रहा हूं, कितना अहंकार दिखाया दुनिया को मैंने। सतपुरुष जो सर्वसमर्थ हैं वो तो कोने में चले जाते हैं जंगल में, कोई इनकी तारीफ ना कर दे, कोई इनको ना देखे। हमसे भी कहते हैं प्रेमी साधना करनी है तो गुप्त होके क्या करो, किसी को पता ही ना लगे वर्षों तक ये क्या करता है, क्योंकि हमको साधना का भी अहंकार हो जाता है ना, मैं बड़ा साधक हूं, बड़ा सच बोलने वाला हूं, बड़ा दानी हूं, बड़ा अच्छा आदमी हूं, अपनी अच्छाई का भी अहंकार हो जाता है। लेकिन ये भूल जाता हूं अच्छाई का अहंकार तो जो है मैं देह हूं, इस तेरी अज्ञानता को गहरा करना है। तेरा ये समझते है कि मैं अच्छा आदमी हूं, तेरे इस अहंकार को गहरा कर रहा है कि मैं देह हूं। ये विवेचन हम कहां कर पाते हैं? इसीलिए जो बात आप पूछ रहे हो, इसका निर्णय ठीक ठीक तभी हो सकता है जब मैं अपने आप को जीव समझू, और देह और मन है ये सूक्ष्म शरीर है। मौत के वक्त ये स्थूल देह खत्म हो जाती है, लेकिन सूक्ष्म शरीर बच जाता है। सूक्ष्म शरीर जीव के संग ही ईश्वर सत्ता में ही प्रवेश कर जाता है, और उस सत्ता से पुनः ये नई देह के रूप में जीव को वापस मिल जाता है। तो मौत है ही नहीं, लेकिन क्योंकि मैं अपने आप को देह समझता हूं, इसलिए जब देह की मौत आती है तो मैं बेचैन होता हूं। हाँ, ये मेरी मौत आ रही है, मेरी मौत आ रही है। जब मौत है नहीं मेरी, लेकिन इस गलत फहमी के कारण मैं रोता चिल्लाता हूं, बड़ा तड़पता हूं, हाय मर जाऊंगा, हाय मर जाऊंगा। और तेरी जो संपत्ति है वो तेरे मन के अंदर है, जो संस्कार है, जो कर्मफल है, वो तेरी संपत्ति है। और संपत्ति समझ रहा तो बैंक बैलेंस कितना है इसको संपत्ति समझ रहा। तो जीव को जो चैन देती है वो मन की संपत्ति चैन देती है, ये संपत्ति चैन नहीं देती है। तो इसीलिए मैं अपने आप को कुछ का कुछ समझता रहता हूं, शास्त्रों को भी कुछ का कुछ समझता रहता हूं, कभी मेरी समझ में ही नहीं आती। एक वहम और पा लेता हूं, मैं सब समझता हूं। मूर्ख होते हुए भी मैं अपने आप को समझदार होने का एक लेबल लगा लेता हूं। इसीलिए मेरी ये दुर्दशा होती है कि जो मेरा प्रारब्ध है उसका मैं अपने आप को कर्ता समझता हूं और बंधन में फंस जाता हूं। क्योंकि जिस चीज का कर्ता समझोगे, कर्ता बन के कर्म करोगे, कर्म का फल तो होगा ही होगा, और वो कर्म का फल सुख रूप होगा और दुख रूप होगा। दोनों ही आपको मोह में बांधेंगे, दुख भी मोह में बांधेगा और सुख भी मोह में बांधेगा, और फर्दर डिजायर वो पैदा करेगा। इसलिए मेरी उलझन, जितना जन्म मैं, जितने वर्ष मैं व्यतीत करूंगा, मेरी उलझन बढ़ेगी। संसार के संस्कार और गहरे होंगे, पांच विकार मेरे और गहरे हो जाएंगे। इसीलिए मनुष्य योनि मनुष्य इससे मनुष्य से छीन ली जाती है, उसको पशु योनि में डाल दिया जाता है। मनुष्य वाला ने कर्म ही नहीं किया तो मनुष्य जन्म का अधिकारी है कहां? वो तो देह भी आपकी बदल दी जाती है, पशु देह आपको प्रदान कर दिया जाती है। आपने संस्कार ऐसे बनाए, विवेक की जरूरत ही नहीं समझी आपने। तो इसीलिए पूर्ण गुरु पर श्रद्धा होना, पूर्ण श्रद्धा, श्रद्धा का मतलब है पूर्ण श्रद्धा, तब उसकी बात आप गहराई से समझने की कोशिश करते हो। क्यों गहराई से समझने की कोशिश करते हो? क्योंकि आपने अपने कर्म को उस ज्ञान के अनुसार बदलना है, तब आप देखते हैं कि धीरे धीरे आपका विकास होता है, और एक दिन आपकी ऐसी स्थिति आ जाती है जब आपकी देह के द्वारा जो कर्म होते हैं वो जीव निष्काम कर्म करने लगता है, अर्थात देह के कर्मों का जो इफेक्ट है जीव के ऊपर वो निल हो जाता है, उसको निष्काम कर देते हैं। और ऐसा जिस जीव के साथ होता है, अंतर्यामी ईश्वर के साथ संग उसका परमानेंट बन जाता है, ये जीव की स्थिति है। तो जीव को तब पता लगता है ये देह मेरा रूप नहीं है, इसको मैं ईश्वर कह रहा था, ये मेरा निज रूप है, ये मेरा निज घर है, ये मेरा परमानेंट होम है। तो ये जीव का ये अनुभव बोलता है। अब बताइए ऐसा जीव किससे डरेगा, किससे डरेगा? पहले तो कंफ्यूजन के कारण डरता था वो, जैसे बालक को कह दो इस कमरे के अंदर जो है वो राक्षस रहता है, खूब डरता है बालक, लेकिन एक दिन बिजली जला दो उसके सामने, वो कहेगा पापा आप तो कह रहे थे राक्षस रहता है, इसमें कोई भी नहीं रहता। अब आप डराओगे तो डरेगा वो, उसको बोध हो गया। तो ये अज्ञानता रूपी राक्षस हमने पाल रखा है अंदर। इसलिए गुरु वो लाइट है, गुरु का जो ज्ञान है वो लाइट है, इस भय को, इस बेचैनी को खत्म कर देता है, और जीव परम आनंद लेकर इस संसार से विदा होता है, ईश्वर रूपी अपने स्वरूप में वो स्थित हो जाता है। ओम ब्रह्म सत्यम।